శ్రీల ప్రభుపాద్కి నితాయ గౌర ప్రేమానంది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధశ జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురన్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సుజీవం సాద్వైతాం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణా లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం శ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ
కృష్ణ.
తో హమ్ పిచ్చలా జో హమారా విషయ థా జిస్ పర్ హమ్ చర్చా కర్ రహే థే కై సప్తాహ సే, తో ఉస్ పర్ హమ్ ఫిర్ సే విచార్ కరేంగే. తో హమ్నే పిచ్చలే వెనస్డే కిస్ పర్ చర్చా కీ థీ ఆప్ మే సే బతాయే. పిచ్చలే వెన్స్డే తో ఆప్నే కీర్తన్ కియా థా, ఉస్కే పిచ్చలే వెన్స్డే क्या चर्चा का विषय क्या था हमारे गुरु, गुरु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और विशेष रूप से हमने दीक्षा के बारे में चर्चा की थी. तो ये समझना उतना ही महत्वपूर्ण है, गुरु के बारे में जानना जितना हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं. जैसे मैंने कहा था, रूप गोस्वामी कहते हैं कि 64 जो भक्ति के अंग हैं उनमें से जो पहले 5 हैं वो आध्यात्मिक गुरु के बारे में हमें बताते हैं. तो दीक्षा का मतलब हमने समझा था कि दीक्षा का मतलब ही है, दी का मतलब है दिव्य ज्ञान और क्षा का मतलब है क्षति, अज्ञानता की क्षति, हमारे भ्रम आदि की क्षति और हमारा अज्ञान है कि मैं ये शरीर हूँ. तो इस प्रकार से दीक्षा का मतलब ये है कि नया जीवन हमें प्राप्त होता है. नया जीवन का मतलब ये है कि हमारा नया नाम भी होगा, नए माता पिता हैं, नए जिम्मेदारीज है, नया फैमिली है, नए फ्रेंड्स हैं, नया स्थान है, नई सेवाएँ हैं. हाँ, जैसे नया शरीर मिला तो उसके साथ सारी चीज़ें हमारे लिए नई हैं. इस भौतिक जगत में भी व्यक्ति पुनर्जन्म धारण करता है तो फिर उसके लिए नया सब कुछ नया हो जाता है. पुराने माता पिता नहीं होते उसके लिए, उसके लिए पुराना देश नहीं हो सकता, पुराना बॉडी नहीं हो सकता, घर नहीं हो सकता. तो उसी प्रकार से हमें ये अपॉर्चुनिटी गुरु के माध्यम से मिलता है कि हम नया जीवन धारण करते हैं, नया जन्म धारण करते हैं. पहला जन्म जो हम प्राप्त करते हैं उसको शौक्र जन्म कहा जाता है, जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की थी. हाँ, जो माता पिता से हमें मिलता है. और दूसरा जो जन्म हमें मिलता है वो कौन देते हैं? आध्यात्मिक गुरु. तो दीक्षा का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है, जो दीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, साधक है या जो व्यक्ति है, वो पूर्ण रूप से उस समय अपने आप को समर्पित करता है श्री गुरु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में. तो ये जो समर्पण की भावना जब तक नहीं होगी तब तक वास्तव में उस व्यक्ति की दीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। तो मैंने कहा था पिछली बार कि सरेंडर किस प्रकार से है, जैसे सांस लेना जीवन भर चलता रहता है, तो उसी प्रकार से शरणागति भी क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग हम शरणागत होते रहते हैं, धीरे धीरे हमारी जो शरणागति की भावना है वो बढ़ती जाती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसाम। तो दीक्षा के समय जो भक्त है अपने आप को समर्पित करता है गुरु और कृष्ण के प्रति। वास्तव में गुरु के प्रति समर्पित होने का मतलब ही है कि हम अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि गुरु तो कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो इसलिए जैसे ही व्यक्ति दीक्षा के समय कृष्ण के प्रति या गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, उसी क्षण कृष्ण उस व्यक्ति को अपने समान ही स्वीकार करते हैं या अपना मानते हैं उसको। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की उस लीला में वर्णन आता है सनातन गोस्वामी का, क्योंकि दीक्षा लेना ये कोई नॉर्मल फॉर्मेलिटी नहीं है। दीक्षा लेने का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। कितना बड़ा जिम्मेदारी है, जो हम फैमिली से भी बढ़कर जो जिम्मेदारी है वो दीक्षा प्राप्त करने का जिम्मेदारी है। ठीक है, घास में बैठ सकते हैं तो उसमें समय चला जाएगा अभी तब। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि सनातन गोस्वामी, जिनका वर्णन पिछली बार मैंने किया था, हाँ सनातन गोस्वामी, क्योंकि दीक्षा लेना मतलब जिस प्रकार से एक युवती का विवाह किसी युवक के साथ हो जाता है, हाँ तो वो फिर अभी अपने माता पिता के घर वाली नहीं रहती, वो किसकी बन जाती है, उस पति की। तो उसी प्रकार से दीक्षा का मतलब ही है कि हमने अभी अपना समर्पण कर दिया है, हमने हमारा पति चुन लिया है, हमें आश्रय देने वाला व्यक्ति को हमने चूज किया है, चुन लिया है, और वो कौन है, कृष्ण है। जिस प्रकार से एक युवती अपने जीवन में किसी युवक को चुनती है या उससे विवाह करती है, तो उसके बाद उसका सारा जो मन है, शरीर है, वाणी है, सब कुछ वो अपने पति के चरणों में समर्पित करती है और उसके प्रति के लिए कार्य करती है, करते कि नहीं करते। तो उसी प्रकार से दीक्षा है कि ऐसा जिम्मेदारी जो गुरु और कृष्ण के प्रति हेतु व्यक्ति को कार्यरत रहना, नया फैमिली ज्वाइन करना। क्योंकि जो गंभीरता से वास्तव में ये जगत से निकलना चाहता है, जिसके अंदर वो सिंसियर डिजायर है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने की, उस व्यक्ति के लिए है हाँ गुरु का आश्रय। इसलिए अर्जुन भी इतने कष्टमय स्थिति में था, विपदा में था, तो उस समय उन्होंने वही किया, निश्रेयसाय उन्होंने कहा गुरु, वो कहते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं थैंक यू, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, हे अर्जुन, हे कृष्णा आप क्या करो मेरे लिए, जो श्रेयस्कर है वो मुझे बताओ। तो उसी प्रकार से दीक्षा लेने का मतलब, दीक्षा लेना मतलब हमारा आध्यात्मिक जो जिम्मेदारी है वो खत्म नहीं हुई। दीक्षा का मतलब क्या है, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई है, ये आध्यात्मिक जिम्मेदारी हमें पता चली है क्या स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कई बार हम सोचते कि बस हो गया, जनरली लोगों से मिलते तो लोग कहते कि हमने तो गुरु धारण कर लिया है, गुरु से दीक्षा ले लिए और हमारा अभी जिम्मेदारी खत्म, जो भी करना है वो गुरु को करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि व्यक्ति किसी गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा का मतलब है उसने उस इंस्टीट्यूट में या उस दीक्षा का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने केवल एडमिशन ग्रहण किया है किसी विद्यालय में, और वो विद्यालय कितने हैं? चार हैं, जिनको संप्रदाय कहा गया है। तो इसी कारण से दीक्षा का मतलब है कि व्यक्ति उस समय से उसका अपने शरीर पर उसका अधिकार नहीं है, वो किसका हो जाता है शरीर? किसकी प्रॉपर्टी होती है दीक्षा के बाद? गुरु की और कृष्ण की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम। तो सनातन गोस्वामी के बारे में हमने सुना था, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के जो महान अनुयायी थे सनातन गोस्वामी, जो छह गोस्वामियों से एक थे जिन्होंने वृंदावन को पुनर्स्थापित किया, तो ऐसे सनातन गोस्वामी, बल्कि बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे अपने धन आदि उच्च पद आदि को त्यागा। क्यों त्यागा? क्योंकि उनको पता था आध्यात्मिक जीवन कितना इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के जीवन में, कितना महत्वपूर्ण है। ये भौतिक चीजें हमें धन, सौंदर्य, मान सम्मान, फैसिलिटीज, ये सब हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मिलने ही वाली है। तल लभ्यते, उन्होंने, नारद मुनि कहते हैं कि ये तो वैसे ही मिलने वाला है, इसके लिए प्रयास क्यों करना है? व्यक्ति को प्रयास करना है आध्यात्मिकता में उन्नति के लिए। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे, तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी निकले। तो जाते समय उनको वृंदावन से जगन्नाथपुरी चल के जाना पड़ रहा था। जाते समय उनको पानी पीने के लिए पानी, ऐसा कोई शॉप्स नहीं थे, स्टॉल्स नहीं थे, तो उस समय उनको रास्ते में गड्ढे में जो पानी वगैरह होते हैं पेड़ के नीचे या कई स्थानों में, वो पीते पीते जा रहे थे, और कोई महीने लगे उनको चलने के लिए जगन्नाथपुरी, वृंदावन से जगन्नाथपुरी। तो उनको एक ऐसी बीमारी हो गई वो दूषित पानी पीने के कारण कि सारे शरीर में फोड़े आ गए और उसमें से पस निकलने लगा, इतना गंदा। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा और इस शरीर को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके, क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, उस रथ के नीचे अपने इस शरीर को त्याग दूंगा बस। तो इस भावना से वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, और वहां जाकर वो हरिदास ठाकुर के साथ रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मिले, चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने प्रणाम किया और आलिंगन करना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा दूर रहिए, मेरे शरीर की बहुत ही बुरी स्थिति है। और चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपका ये सेनापति भक्त है। चैतन्य महाप्रभु के दो सेनापति थे जिनको उन्होंने वृंदावन में प्रचार के लिए भेजा था, वृंदावन को स्थापित करने के लिए भेजा था, और वो कौन थे? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। आज जो हम वृंदावन देखते हैं वास्तव में इन दो गोस्वामियों की देन है। इससे पहले वृंदावन तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, वहां तो जंगल था। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के बारे में हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये सनातन अभी आया है और ये सोच के आया है वृंदावन से कि अपने शरीर को जगन्नाथ जी के रथ के पहियों के नीचे त्यागना चाहता है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे सनातन, यदि इस शरीर को रथ के नीचे त्यागने मात्र से, या इस शरीर का शरीर त्यागने मात्र से यदि कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं तो अपने हजारों हजारों शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं। किसने कहा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा। कृष्ण प्राप्ति तो केवल संभव है भगवत भक्ति करने से, और कोई चीज से नहीं। न स्वाध्याय तपोस त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जित। उद्धव को भगवान कृष्ण ने यही कहा कि न स्वाध्याय, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, पांडित्य है, बुद्धिमता बहुत मेरी प्रगाढ़ है, मैं शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान को समझ सकता हूँ। भगवान कहते न स्वाध्याय तपोस त्याग, बड़ी बड़ी तपस्या करने मात्र से, बड़ा बड़ा त्याग करने मात्र से, भगवान कहते कि यथा भक्तिर ममोर्जित। हे उद्धव, जो भगवत भक्ति मुझे आकृष्ट करती है, भगवत भक्ति इतना शक्ति रखती है कि मुझे जीतती है। अजीतो अपि जीतोस्मि, भगवान का नाम अजीत है लेकिन उनको भी जीतने का सामर्थ्य क्या रखती है, जो भक्ति है, उनकी सेवा, उनके प्रति प्रेममयी सेवा। तो उन्होंने कहा यदि ऐसा शरीर त्यागने मात्र से यदि कृष्ण प्राप्ति होती है तो मैं हजारों हजारों शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे तुम्हारा देह मोरा निज धन, तुम्ही मोरे करिया छे आत्म समर्पण। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को दीक्षा दी थी। किनको दीक्षा दी थी? रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को। साकर मल्लिक, सनातन गोस्वामी का नाम क्या था? साकर मल्लिक। और दबीर खास, रूप गोस्वामी का नाम क्या था? दबीर खास, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण, कर्नाटक के, बंगाल में रहा करते थे नवाब हुसैन के। उस समय बंगाल में सबसे बड़े कोई विद्वान थे या बुद्धिमान थे तो ये दो भाई थे, जिनके कारण नवाब हुसैन ने फोर्सफुली अपने राज्य में उनको मंत्री पद दिया। हाँ, एक वित्त मंत्री थे और एक प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी पूरे बंगाल के। और ये नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी मुस्लिम जो गो हत्या या बहुत सारे पापमय कर्मों में लगे हैं उनके यहाँ नौकरी करो या सेवा करो। बल्कि नवाब ने कहा कि यदि आप हमारे यहाँ सेवा नहीं करोगे, इस पद को स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं बंगाल में जितने वैष्णव हैं उनको परेशान करूंगा, मंदिरों को तुड़वाऊंगा। केवल इस चीज के लिए इन दोनों ने उनका गुलामी को स्वीकारा था कि वैष्णवों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, मंदिरों का तोड़ना नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी बंगाल में, जो अभी वेस्ट बंगाल में वो स्थान है, इंडिया में है, रामकेली गांव में, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप दोनों भाइयों ने मेरे प्रति समर्पण किया है और आपका यह शरीर अभी ये मेरी प्रॉपर्टी बनी है। क्योंकि शरीर जब हम गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वास्तव में इस शरीर को हम सेल करते हैं। कोई पत्नी या कोई जो युवती है जब पति से शादी करती है तो वास्तव में उस पत्नी का या उस युवती का अपने शरीर पर अधिकार नहीं रहता, वो किसका अधिकार हो जाता है? उस पति का। जिस प्रकार से गाय को आप बेचते हो तो जिसको बेचते हो उसका पूरा अधिकार है उस गाय के ऊपर। तो उसी प्रकार से गुरु के प्रति शरणागत होने का मतलब या दीक्षा लेने का मतलब कि हम अपने आप को आत्मसमर्पित कर रहे हैं पूर्ण रूप से। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका यह शरीर जिसको तुम जगन्नाथ जी के रथ के नीचे त्यागने की इच्छा करके पुरी में आए हो, ये तो आपका है ही नहीं, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये धन है, ये मेरा है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी मुझे समर्पित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी थी, उनका नामकरण आदि किया था। महाप्रभु ने कहा, परेरा द्रव्य तुम्हें केने चाह विनाशिते, धर्मा धर्म विचार के वा ना करे थे। कि दूसरों का धन है, तुम्हें क्या अधिकार है दूसरों का धन का विनाश करने का? तुम्हें ये भी नहीं पता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा और कहा, तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, ये शरीर आमी बहु प्रयोजन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सनातन, तुम्हारा ये शरीर है ये मेरा प्रधान साधन, प्रधान मीन्स सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। क्योंकि आपके शरीर के द्वारा मुझे क्या करना है? बहु प्रयोजन, एक ही काम नहीं करना है, आपके इस शरीर के द्वारा मुझे कृष्ण के लिए नाना प्रकार की सेवाएं करना है। तो गुरु का मतलब वही है कि जो शिष्य का मन इंद्रिया कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए नाना प्रकार के उपाय ढूंढता है और उनको लगाता है, वो गुरु है। या गुरु की सरल व्याख्या क्या है? हाँ, क्योंकि हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है, हर एक के हृदय में, या कृष्ण के लिए भक्ति है। गुरु वही है कि उस प्रेम को जो जागृत करता भगवान के प्रति, हाँ, उजागृत करता है, निकालता है, वो वास्तव में गुरु है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। तो नित्य है भगवान के प्रति जो हमारे हृदय में जो प्रीति है। तो दीक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है, या दीक्षा का मतलब ही है कि जो दीक्षा का प्रोसेस है वो हमें गुरु और कृष्ण के नजदीक ले आता है, क्लोज ले आता है। तो दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है तो वो वास्तव में पावरफुल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। अभी दीक्षा तो हुई होगी लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि पावरफुल हो गए हम। वास्तव में हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो अधिकृत रूप से हम पूरी परंपरा से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये परंपरा कहां तक है? कृष्ण तक। और कृष्ण एम्पावर करते हैं उस व्यक्ति को। और वास्तव में दीक्षा के बाद ही जो भगवान है हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, गुरु हैं, उनके उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उनके माध्यम से भगवान सेवाओं को स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान पान फल फूल जल आदि को नहीं खाते, भगवान क्या खाते हैं? भक्ति को लेते हैं, चाहे हम जो मर्जी ऑफर कहें। विदुर की जो पत्नी थी उन्होंने केले के छिलके ऑफर किए, भगवान ने क्या लिया उसमें? डिवोशन, जो लव है भगवान के प्रति, जो प्रीति है, अटैचमेंट है, उसको भगवान ने स्वीकार किया। तो वास्तव में, लेकिन हम जो सेवाएं कर रहे हैं ये तो हमारे लिए फोर्सफुली किया जा रहा है, हमारा इच्छा नहीं है, हमारा इच्छा नहीं है। अभी मतलब हमारा भगवान के प्रति सेवा के लिए या भगवान के बारे में सुनने के लिए, उनका नाम उच्चारण करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। लेकिन क्या अभी छुट्टी है, लंच ब्रेक है, आसपास के लोग थोड़ा कहते तो चलो एक सभ्यता को दिखाने के लिए चले, धार्मिक हूँ मैं क्या हूँ? धार्मिक हूँ, थोड़ा जाकर बैठता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है। हाँ, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, भक्तों के बीच में आएंगे तो हम माला तिलक आदि धारण करके आएंगे और नाइट में डिस्को क्लब में जाएंगे, ऐसे नहीं। तो वास्तव में कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं और उनके गुरु को, भगवान के प्रिय भक्त जो गुरु है उनका हम आश्रय ग्रहण करते हैं, तब कृष्ण वास्तव में हमारी सेवाओं को स्वीकारते हैं। और जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, भगवान के जो विशुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, वो हमें नाम प्रदान करते हैं। हम गुरु का मतलब ही है, गुरु मेक्स कृष्ण अपीयर इन द हार्ट ऑफ डिसाइपल। गुरु क्या करते हैं? कृष्ण को शिष्य के हृदय में प्रकट कराते हैं। लेकिन शिष्य को भी कैसे होना चाहिए? गुरु के विधि या प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो जब गुरु हमें हरि नाम देते हैं तो और अधिक पावरफुली वो जो हरे कृष्णा मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो मंत्र है वो और अधिक प्रभावशाली काम करने लगता है। क्योंकि वो किनके द्वारा है? गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए फर्स्ट प्यूरिफिकेशन, जो हमारी शुद्धि है वो बहुत जल्दी होना शुरू होती है। तो इसलिए दीक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो वास्तव में अध्यात्म को स्वीकार करना चाहता है। ऐसे तो हजारों हजारों लोग हैं जिनको शास्त्रों का भी ज्ञान है, वो प्रवचन भी दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं बड़े बड़े आर्टिकल्स आदि। हाँ, लेकिन वो सरेंडर नहीं होना चाहते। क्या नहीं होना चाहते? सरेंडर नहीं होना चाहते। सर अंडर, सर को कहा अंडर, भगवान के भक्तों के चरणों में, गुरु के चरणों में अंडर नहीं डालना चाहते, हम उठा के। हाँ, तो माया एक दिन उसकी गर्दन को पकड़ती है और भौतिक जगत में नाक को घिसती रहती है उसके, नाना प्रकार के विपदाएं देकर, कष्ट आदि देकर। तो इसलिए सरलता, सेफ पोजीशन यही है, फ्रीडम बाय सरेंडर। सेफ पोजीशन क्या है? फ्रीडम तभी है वास्तव में जब हम गुरु के चरणों में शरणागत हो सकते हैं, अन्यथा ये तो एक दिखावा है अध्यात्म का। थोड़ा सा अगरबत्ती घुमाया, कुछ माला जप कर दिया, कुछ प्रवचन आदि सुने, लेकिन ये आकांक्षा नहीं जागृत हुई कि नहीं, मुझे अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु का शेल्टर ग्रहण करना ही है। जब तक शेल्टर ग्रहण नहीं करते तब तक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती, असंभव है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, कृष्ण आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, भगवान राम आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ, हाँ, जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करके दिखाते हैं, स्वयं भगवान अपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से भगवान या जो प्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु हैं वो सारे जीवों को ही शिक्षा देते हैं। इस भौतिक जगत में भी हम किसी न किसी को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, किसी न किसी भौतिक विद्या को हमें अर्जन करना होता है तो अलग अलग जो विषय है, हाँ, तो इसलिए ये जो दीक्षा है ये भगवत प्राप्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है, गुरु का आश्रय लेता है, उस जीव के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति कृष्णा स्पेसिफिकली अटेंटिव हो जाते हैं। कृष्ण फिर अभी सावधान हो जाते हैं, अभी तो ठीक है बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन जैसे भगवान ने देखा, अरे इसने शेल्टर ग्रहण किया है मेरे प्योर डिवोटी का, कृष्ण क्या होते हैं, अटेंटिव हो जाते, स्पेसिफिकली उसका ध्यान देना शुरू करते हैं। हाँ, इस प्रकार से भगवान बहुत अटेंटिव होते हैं, करुणामय होते हैं जब व्यक्ति गुरु का आश्रय ग्रहण करता है। शास्त्र में वर्णन आता है, एक बार एक जो डिवोटी है, हाँ, क्योंकि भक्त के जो पुकार है भगवान तक नहीं पहुंचती एक प्रकार से, हाँ, लेकिन भगवान किसके माध्यम से उस भक्त की पुकार सुनते हैं, गुरु के माध्यम से। शास्त्र में वर्णन आता है कि एक बार कृष्ण, एक जो भक्त था वो बहुत अधिक ट्रबल में था, बहुत अधिक कष्ट थे, रो रहा था बेचारा, और वो रोते हुए कह रहा था, गुरुदेव गुरुदेव हाँ मुझे इन विपदाओं से बचाओ। तो ऐसा जब वो कह रहा था तो कृष्ण उस समय द्वारका में रुक्मिणी के साथ प्रसादम ग्रहण कर रहे थे, रुक्मिणी उनको सर्व कर रही थी भोजन, और कृष्ण उस भोजन का आनंद उठा रहे थे, पा रहे थे। और जैसे ही भगवान ने सुना, बल्कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे रुक्मिणी और कृष्ण, और ये भक्त का आवाज कृष्ण को जैसे ही सुनाई दिया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, तो कृष्ण उस भोजन को छोड़कर ही भागने लगे। रुक्मिणी ने कहा, आज तक तो ऐसे हुआ नहीं, आप थोड़ा आराम से खा के तब निकलते हैं, कितने भी इमरजेंसी हो हमारा भोजन हम छोड़ते हैं क्या घर में? नहीं छोड़ते, मेट्रो छूट जाए कुछ और छूट जाए, टाइम में जल्दी करेंगे लेकिन इतना जल्दी नहीं कि आधे में छोड़कर भागेंगे, नहीं। हाँ, कृष्ण इतना अटेंटिव हो जाते हैं, कृष्ण भागने लगते हैं। रुक्मिणी ने कहा कि मैंने हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा, मैंने कहा मैंने गिनीज बुक में भी नहीं पढ़ा कि कोई अपना भोजन छोड़ के भागा है बीच में, नहीं। उन्होंने कहा कि आप आज क्या ऐसा हुआ कि आप भाग रहे हो, आधा भोजन छोड़कर ही भाग रहे हो? तो वैसे रुक्मिणी ने कहा, आपको तो इतने सारे भक्त बुलाते रहते हैं लेकिन फिर भी आप इतना तीव्रता से नहीं भागे जितना आज भाग रहे हो। तो कृष्ण ने कहा कि क्योंकि मैं जाता हूं जब मुझे भक्त बुलाते हैं, लेकिन आज इसलिए, बाकी समय तो भक्त मेरा नाम लेते हुए बुलाते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो बुलाते हैं, भगवान आप मुझे बचाओ, मेरी रक्षा आदि करो। हाँ, लेकिन आज स्पेशली मेरा भक्त कैसे बुला रहा है मुझे, अपने गुरु के माध्यम से, गुरुदेव, और मुझे इसलिए इसलिए जल्दी है कि मुझे अपना जो फॉर्म है गुरु के रूप में उनको प्रकट कराना है। तो भगवान अटेंटिव हो जाते हैं कृष्ण उस व्यक्ति के प्रति जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं या गुरु हैं उनका आश्रय ग्रहण करता है। क्योंकि गुरु कृष्ण के लिए सबसे अधिक प्रिय है। गुरु का मतलब है भारी, किस चीज से भारी? आध्यात्मिक शक्ति से भारी, भगवत प्रेम से भरा हुआ जो है, हाँ, वो वास्तव में गुरु है। एक बार नारद को बहुत सारी शंकाएं थी, तो उन्होंने कहा, सोचा भी, भक्तों को संशय आत्मा विनश्यति, कृष्ण गीता में कहते जैसे संशय आएंगे उसका विनाश हो जाता है। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, भौतिक संबंधों में संशय आत्मा विनश्यति, संशय आते तो व्यक्ति के संबंधों में गिरावट आने लगती है, विपदाएं आने लगती हैं। तो नारद ने भी यही सोचा, नारद के मन में कई सारे प्रश्न थे, एक शंका थी, नारद को ये क्वेश्चन घूम रहा था उनके दिमाग में कि कौन ग्रेट है, महान कौन है यहाँ पूरे विश्व में। तो उन्होंने सोचा इसका उत्तर साक्षात भगवान को ही पूछना पड़ेगा, किन को पूछे, तो भगवान नारायण के पास जाते, कृष्ण के पास जाते और उनको उन्होंने पूछा कि मेरे मन में ये बहुत बड़ा संशय है और मैं चाहता हूँ, मेरा ये प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ कि कौन श्रेष्ठ है, कौन महान है। तो भगवान ने कहा, देखो मेरे मतानुसार जो पृथ्वी है वो महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं अवतरित भी होता हूँ तो मैं पृथ्वी का आश्रय ग्रहण करता हूँ, पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर भगवान कहने लगे थोड़ी देर में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, पृथ्वी से मुझे लगता है क्योंकि पृथ्वी को भी किस चीज ने घेरा हुआ है, समंदर ने, जल ने घेरा हुआ है कि नहीं, तो ये जल या समंदर भी बहुत श्रेष्ठ है। अभी वास्तव में कृष्ण ही भगवान ही अर्जुन नारद के प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं और देते हुए श्रेष्ठत्व का स्थापना कर रहे हैं, हु इज ग्रेट, कौन महान है। तो जब भगवान ने कहा कि पृथ्वी महान है जिसका मैं आश्रय ग्रहण करता हूं, फिर भी थोड़ी समय में कृष्ण ने कहा नहीं, पृथ्वी से भी समंदर श्रेष्ठ है क्योंकि समंदर ने उसको घिरा हुआ है, उसके अंदर आती है वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है इससे भी अगस्त्य मुनि बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने समंदर को एक बार पी लिया था। समंदर को पीना हम कल्पना नहीं कर सकते, हम एक समय में एक लीटर बोतल नहीं पिया जाता। हमारे होटल के डॉक्टर है वो कहते 8 लीटर पानी पियो, हमारे भक्त एक समय में 2-2 लीटर पी लेते हैं। तो लेकिन समंदर को पी पाना कितना कष्टप्रद है, लेकिन अगस्त्य मुनि ने पी लिया था। फिर भगवान ने कहा अगस्त्य मुनि श्रेष्ठ है इसका मतलब, लेकिन उससे भी उन्होंने कहा क्योंकि ऐसे अगस्त्य मुनि भी आकाश में निवास करते हुए एक उनका स्थान है, तो अगस्त्य मुनि से भी जो आकाश है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ऐसे श्रेष्ठत्व की व्याख्या करते करते उन्होंने कहा आकाश श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि मैं अवतरित हुआ था इंद्र के भाई के रूप में, उपेंद्र, वामनदेव, वामनदेव का दूसरा नाम क्या है, उपेंद्र है, उपेंद्र, इंद्र के जो छोटे भाई है, तो मैं वामनदेव के रूप में अवतरित हुआ तो उस समय मैंने अपने नाखून से पूरे आकाश को नाप लिया था। तो आकाश भी क्या है, छोटा है। तो नारद ने कहा सही कहा भगवान, आप ही श्रेष्ठ है, सीधा बोल देते हैं, इतने सारे उदाहरण बता बता के आपने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। और अच्छा भी लगता है किसी व्यक्ति को आप कहोगे कि नहीं आप बहुत महान है, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या करते हुए कहोगे तो उसका हृदय भर जाएगा, हाँ हाँ वो इसके कारण मैं श्रेष्ठ हूँ, उसके कारण मैं श्रेष्ठ हूँ। तो नारद ने कहा इतना सब आपने पूरा व्याख्या वर्णन किया तो पहले बता देते, और मैं जानता मतलब थोड़ा सा था मुझे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप ही श्रेष्ठ हो सकते, लेकिन भगवान ने उत्तर देना चेंज कर दिया। भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं बल्कि मैं सदा तुम्हारे चित्त में निवास करता हूं, इसलिए श्रेष्ठ कौन है, आप हो। हाँ तो और ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए तुम्हारे चित्त में मैं निवास करता हूं, नहीं, नित्यशः यो माम स्मरति नित्यशः या सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान गीता में कहते। भगवान ने कहा कि हे नारद, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे चित्त में होता हूं, नहीं, तुम तो मुझे हमेशा 24 आवर्स, कितने घंटे, 24 घंटे, सदा तुम मुझे अपने चित्त में धारण करते हो, और इसलिए श्रेष्ठ कौन है इस संसार में, भगवान के जो भक्त हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरु का मतलब ये जो शुद्ध भक्त है, कृष्ण के अनन्य भक्त। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। और वास्तव में संसार में श्रेष्ठ कोई है तो भगवान के ऐसे जो अनन्य प्योर डिवोटीज है, शुद्ध भक्त है, नारद के समान। नारद का मतलब ही है ना, मीन्स नारायण, नारद, द मीन्स देने वाले, नारायण को जो देते हैं उनको नारद कहा गया है, जो सारे जगत को बांटते हैं नारायण को। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद आदि है, श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण का वितरण किया, भारत में नहीं किया, कुछ छोटे से शहर के लिए नहीं किया, पूरे विश्व के लिए श्रील प्रभुपाद ने भगवान का वितरण किया। तो इस प्रकार से कृष्ण उस व्यक्ति के लिए मोर अटेंटिव, और अधिक अटेंटिव हो जाते हैं जो व्यक्ति गुरु का आश्रय ग्रहण करता है और उनको दीक्षा के लिए अप्रोच करता है और विधिवत उनसे आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करता है। तो इसलिए ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि गुरु का पोजीशन क्या है, या गुरु को किस प्रकार से भगवान का प्रिय है हमें समझना चाहिए, या फिर गुरु की आध्यात्मिक योग्यताएं क्या हैं जिनके कारण वो वास्तव में कृष्ण के प्रिय हैं, या जिनका हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उस व्यक्ति की योग्यताओं के बारे में भी हमें अवगत होना चाहिए। क्योंकि अभी कलयुग में, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि गुरु तो बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तो स्पेसिफिकली कहा करते थे कि भारत तो भगवान और गुरु बनने का या बनाने का फैक्ट्री है, या हर मोहल्ले में भगवान बैठा है और हर मोहल्ले में एक एक गुरु है। तो इस प्रकार से इतना सरल नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरुज हैं जो मंत्र देने के लिए तुरंत तैयार बैठे हैं, बस, लेकिन वो वास्तव में मंत्र नहीं देते, भगवान का नाम नहीं देते, वो आपको क्या दे रहे हैं, बस अल्फाबेट्स दे रहे हैं, ए बी सी दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि भगवान का नाम तो भगवान का शुद्ध भक्त ही दे सकता है, बाकी लोग तो बस वो देंगे आपको, अल्फाबेट्स दे सकते हैं। तो ऐसे जो गुरुज हैं जो बैठे हुए रेडी हैं, आप आओ, वो केवल इंटरेस्टेड है आपके प्रणाम और आपकी प्रणामी। क्या चीजों में इंटरेस्टेड है? आपका प्रणाम और आपकी प्रणामी, आपके आपका प्रणाम चाहिए और आपसे धन चाहिए, प्रणामी चाहिए, बस। आपको हर रोज नया मंत्र लेने के लिए तैयार है, हाँ, उनके लिए ट्रबल नहीं है। तो ये वास्तव में गुरु, इस प्रकार कलयुगा में लोगों की स्थिति है। तो गुरु केवल मंत्र दत्त गुरु नहीं, केवल मंत्र देकर ही नहीं छोड़ता, आजकल तो ऐसे हैं। रूप गोस्वामी ने कहा दीक्षा और उसके बाद शिक्षा, क्या दीक्षा और शिक्षा। हाँ, हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, हम क्या चाहते हैं, बस दीक्षा। तो ऐसे चिप चिप धोखा देने वाले लोग बैठे हुए हैं, मंत्र दत्त गुरु जिनको कहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय ग्रहण करते हैं वो केवल मंत्र देकर ही नहीं छोड़ते, वो आपको कृष्ण देते हैं, इसलिए उनको कृष्ण दत्त गुरु कहा गया है, कृष्ण देने वाले। नाम दिया और घर भेज दिया आपको, बस फिनिश। आप घर में गुल्लक रखो, मंथली डोनेशन डालो, साल में जब गुरु पूजा आता है, ऐसे होता है ना, पर्व है, गुरु आने वाले हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगेंगे, गुरु का आगमन हो रहा है आपके दिल्ली शहर में, और आपने जो भी पूरे साल भर अपना गुल्लक भर के रखा है, गुरु पूजा में आना है आपको। तो इस प्रकार से मंत्र दत्त गुरु जो केवल इंटरेस्टेड है प्रणाम और प्रणामी में, वास्तव में हमें कृष्ण दत्त जो कृष्ण को देने वाले हैं, और जो कृष्ण का आश्रय देने वाले हैं, नाम देकर छोड़ दिया ये नहीं, उसके बाद क्या है, शिक्षा। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस परंपरा में ऐसे महान गुरु वर्ग हैं, जिन्होंने, श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लो, जिन्होंने इतने सारे मंदिर बनाए, किसके लिए बनाए, शिक्षा के लिए। आध्यात्मिक जीवन हमें जितना दीक्षा महत्वपूर्ण है, उतना ही शिक्षा का भी महत्वपूर्ण रोल है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने कहा हमारे जो मंदिर है, ये कृष्ण नाम कृष्ण पूजा, और कृष्ण शिक्षा के लिए है। इस कारण से ये जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान गुरु ही भगवान है। आजकल तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ही है कि गुरु ही क्या है, भगवान है। भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, कि साक्षात हरि के समान उनका स्थिति है, क्योंकि वो भगवान के बहुत अधिक प्रिय है और भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार से किसी देश का एम्बेसडर होता है, वो क्या करता है, उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी प्रकार से गुरु जो है भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपादा आप भगवान है, यू आर गॉड? प्रभुपाद ने कहा नहीं। जो आपने आपको प्रभुपाद ने कहा, जो आपने आपको गॉड समझते हैं वो गॉड नहीं है, वो क्या है, डॉग है, डॉग्स है। तो इस प्रकार से गुरु भगवान नहीं है, बल्कि भगवान का प्रिय सेवक है। तत्रादि दक्षाद अति वल्लभ हर्ष, वल्लभ मीन्स प्रिय, श्री श्री राधा वल्लभ भगवान का एक नाम है ना, वल्लभ, वल्लभ मीन्स क्या, प्रिय। तत्रादि दक्षाद, वो बहुत एक्सपर्ट है। किस चीज के लिए एक्सपर्ट है गुरु? भगवत सेवा के लिए। तत्रादि दक्षाद अति वल्लभ हर्ष, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हाँ, तो हम मंगल आरती में सुबह सुबह ये प्रार्थना गाते हैं कि गुरु एक्सपर्ट है भगवत सेवा में, और जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए भगवान ने कहा कि गुरु को जो स्थान है या गुरु को सम्मान वैसा ही देना चाहिए जैसा हम कृष्ण को दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान है। जो व्यक्ति गुरु को ही भगवान स्वीकार करते हैं या भगवान समझते हैं, वो मायावादी हैं, शास्त्र कहते हैं। चैतन्य कृष्ण ने उद्धव को कहा, आचार्य माम विजानियात नाव मन्ने तो करियचित, कि आचार्य को मेरे समान ही समझना चाहिए, उसको इतना उस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, उस प्रकार से आदर देना चाहिए। नाव मन्ने तो उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। न मर्त्य बुद्धि असुयेत सर्वदेव मयो गुरु, न मर्त्य बुद्धि, जो गुरु है उनमें एक सर्वसामान्य व्यक्ति की भावना से उनका आकलन नहीं करना चाहिए, उनको देखना नहीं चाहिए, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। न मर्त्य बुद्धिया, उनको एक सर्वसामान्य जो इस जगत का मृत्युशील व्यक्ति है उनके समान व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए उनको। सर्वदेव मयो गुरु, किसी गुरु में सारे देवतागण आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं साधवो हृदयो मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम, कि साधु ऐसे जो प्रिय भक्त हैं वो मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। तो गुरु वास्तव में कृष्ण का कृपा का स्वरूप है, कृष्ण कृपा मूर्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु कृष्ण रूप हय शास्त्रे प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। तो शास्त्र प्रमाण है गुरु कृष्ण रूप है, गुरु क्या है, कृष्ण के समान है, कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे, गुरु के रूप में कृष्ण वास्तव में कृपा व्यक्ति के ऊपर करते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, यश अप्रसादात न गति कुतोपि। तो यश प्रसादात उनकी कृपा, वो कौन है, कृष्ण है। यश प्रसादात वो गुरु है, यश प्रसादात भगवत प्रसादो, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है आध्यात्मिक गुरु की, तो वास्तव में कृष्ण की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है, और कृष्ण आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कृष्ण जदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाय आपने। तो वास्तव में गुरु के रूप में कृष्ण हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए गुरु को हमें आदर आदि प्रदान करना चाहिए, उनमें ये मर्त्य बुद्धि की जो भावना है वो नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु वो ऐसी गिफ्ट हमें दे रहे हैं जो सर्वोत्तम है, जो इस जगत की वस्तु हमें नहीं दे रहे वो, हाँ वो आध्यात्मिक गिफ्ट दे रहे हैं। और वो आध्यात्मिक गिफ्ट क्या है, इस संसार में हम इतना खुश हो जाते हैं कोई व्यक्ति हमें कुछ गिफ्ट दे देता है, कुछ वस्तु देता है, तो हम बड़े आनंदित हो जाते हैं, उसके प्रति आदर सम्मान आदि की भावना रखते हैं। लेकिन गुरु वास्तव में ये जगत की वस्तु नहीं देते, हाँ गुरु क्या देते हैं हमें, आध्यात्मिक जगत की दिव्य वस्तु प्रदान करते हैं। वो क्या है, गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत का वस्तु है वो भगवान नाम, जो अभिन्नत्वात् नाम नामिना, भगवान का नाम कृष्ण से अभिन्न है। और वो नाम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गुरु को वैकुंठ मैन कहा गया है, वैकुंठ के व्यक्ति है। हाँ जैसे भगवान, भगवान को सेव्य भगवान कहा जाता है, और गुरु को भी भगवान कहा जाता है या भक्त को भी भगवान कहा जाता है, वो क्या है, सेवक भगवान। तो इस प्रकार से जो गुरु है उनका, उनके बारे में उनकी योग्यता आदि को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु वो है जो कृष्ण के प्रति हमारा जो डिवोशन है, भक्ति है, वो जागृत करता है। हाँ जिस प्रकार से हम सो जाते हैं, सोते हैं तो कोई हमें उठाता है, कोई पिंच करता है, अलार्म क्लॉक भी हमें उठाता है कि नहीं, हाँ तो इस प्रकार से गुरु हमें जगाते हैं, जागृत करते हैं, उठाते हैं। तो ऐसे कितने प्रकार के गुरु हैं, 5-6 प्रकार के गुरु हैं। कितने प्रकार के, हाँ पहले है पथ प्रदर्शक गुरु, पहले क्या है, पथ प्रदर्शक गुरु। दूसरे है शिक्षा गुरु, तीसरे है दीक्षा गुरु, चौथे है चैत्य गुरु, और 5वें है फाउंडर आचार्य। संप्रदाय की शिक्षा को सही रूप से स्थापित करते हैं, ताकि सारे जीवों को उचित रूप से कृष्ण विज्ञान प्रदान किया जाए, तो वो फाउंडर आचार्य। तो इस प्रकार से ये 5 गुरु हैं। पहले कौन से गुरु हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरे हैं शिक्षा गुरु, तीसरे हैं दीक्षा गुरु, चौथे हैं चैत्य गुरु, 5वें हैं फाउंडर आचार्य संप्रदाय के, जो सारी शिक्षाओं का सम्मिलन करके उचित रूप से बद्ध जीवों को गाइड करने के लिए प्रदान करते हैं। तो हम अगले वेंसडे इन 5 गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे, और उनके साथ साथ जो गुरु की योग्यताएं हैं उनके ऊपर भी विश्लेषण करेंगे। हरे कृष्णा, तो लाउडली चांट करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी की समीक्षा या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।